ओम शांति। 11 दिसंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु। मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति देने, मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु कौन हो? सतगुरु के बच्चे गुरु हो। मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु। सतगुरु नहीं कहा आपको? हमें सतगुरु क्यों नहीं कहा? हम नहीं है, हम सतगुरु क्यों नहीं है भाई? सतगुरु के बच्चे मास्टर लगा देता, मास्टर सतगुरु, मास्टर सतगुरु भी नहीं लगाया क्यों? हाँ, चलो ठीक है, मान लिया कि वो हमारा जैसे बाकियों के साथ हमारे मास्टर लगाता है ना, तो आज हमारे साथ मास्टर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगा। हमने झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगा, इसलिए मतलब ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शंकर भी सतगुरु नहीं हो सके, क्योंकि दुनिया वालों के हिसाब से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों ने इस झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोगा है, इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सतगुरु नहीं कह सकते। और ज्ञान मार्ग के हिसाब से ये तीनों बेशक इस संसार में नहीं आए, तब भी उनको नहीं कह सकते, क्योंकि मंत्र में जो बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा, सतगुरु ब्रह्मा नहीं बोलते। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, भक्ति मार्ग की बात मैंने पहले इसलिए कही कि भक्ति मार्ग में तीनों को गुरु कहा। इसके बाद अगली लाइन के अंदर हमने चर्चा की हुई है, पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वरा। गुरु जो है ना, वो कौन है? साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर, वो भी गुरु है, जो चौथा है। चौथे की तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया। गुरुर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वरा तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। उस सतगुरु को मेरा नमस्कार, जो अलग है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, उसके साथ सतगुरु प्रयोग किया। और वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो ना, वो कौन है? शिव बाबा। ये तीनों तो इसी लोक में है ना, सूक्ष्म लोक में भी आए ज्ञान मार्ग के हिसाब से, तो वो उस पार ब्रह्म परमेश्वर की रचना है। और उन तीनों ने, जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, वो किसी को ज्ञान नहीं देते। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर किसी को ज्ञान नहीं देते, तो उनको गुरु भी नहीं कह सकते। बाबा कहते उनको तो गुरु भी नहीं कह सकते, और हमें गुरु कहा कह सकते हैं, परंतु हम गुरु हैं, हम भी झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगने के कारण हम भी सतगुरु नहीं हो सकते। कितना भी हम करें, कहीं ना कहीं हमारी मन मत उसमें क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है, धारणा में मिक्स हो जाती है, जिसके कारण परमात्मा कहते मेरे को ही याद करो, मैं किसी भाई बहन को याद नहीं करो, क्योंकि उनमें गुणों के साथ कहीं ना कहीं अवगुण जरूर मिक्स हो गया होगा। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बाबा केवल और केवल हमारे को एक क्या बोलते हैं मान दे रहे हैं, बाकी जितना मुझे समझ में आया है मैं उतना ही तो सच बताऊंगा। इसलिए तो सतगुरु नहीं कहा जा रहा। जितना मुझे समझ में नहीं आया मैं वहां कोई ना कोई तो गड़बड़ी करूंगा, अपनी मन मत से कुछ ना कुछ तो बता ही दूंगा। तो इसलिए तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। जितना तुम्हें सच मालूम है उतना सच तो आप बताएंगे ना। प्रश्न, सेकंड में जीवन मुक्ति कितनी देर में प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? प्राप्त करने की विधि, क्या प्राप्त करना है हमको सेकंड में जीवन मुक्ति, और उसकी विधि क्या है और उसका गायन क्या है, उसके लिए क्या कहा जाता है? सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सेकंड में यदि हमें जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है तो बाबा ने कहा अभी प्राप्त करनी है। सतयुग में जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, जीवन मुक्ति अभी प्राप्त करनी है और उसके लिए क्या करना है? परिवृत्ति में रहते हुए, परिवार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो। कमल फूल समान पवित्र बनो मीन्स इस शरीर में, शरीर के संबंधियों में उनके साथ रहते हुए अपने आप को आत्मा समझो कि मैं ना तो ये शरीर हूं और ना ये मेरा परिवार है, परंतु इनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, वो हिसाब पूरा तो मुझे जरूर करना ही पड़ेगा, चाहे वो सुख का है तो चाहे वो दुख का है, परंतु हिसाब पूरा करते वक्त भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैंने जो दिया है वही तो मुझे दे रहे हैं, जो मैंने लिया हुआ है वही तो मेरे से ले रहे हैं। इस प्रकार से सोचते हुए क्या रहो? न्यारे साक्षी, न्यारे साक्षी। सिर्फ इस अंतिम जन्म में, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, और उस प्रतिज्ञा के अंदर मेन बात जो अपने आप को समझानी है, मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा को जो चाहिए वो मुझे मिलेगा, मेरे रोल में जो है वो मुझे मिलेगा, वो मुझे करना है, परंतु मुझे इस आत्मा को कोई ऐसी चीज नहीं इच्छा करनी जो आत्मा को नहीं चाहिए। मैंने कोई इच्छा नहीं करनी जो आत्मा को नहीं चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी विकार आत्मा को नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुझे आत्मा को विकृत करते हैं, बिगाड़ देते हैं, अशुद्ध बना देते हैं। हाँ, तो जीवन मुक्ति समझ में आए, फिर हमारे को कोई जीवन बंधन नहीं। जीवन बंधन बनता ही मेरे कर्म के अनुसार है ना। मैंने देखना गलत किया, मैंने बोलना गलत किया, मैंने सोचना गलत किया, बन गया हिसाब। तो जीवन मुक्ति मतलब पवित्र बनो, और पवित्र बनो का मतलब कि मैं आत्मा हूं। आत्मा फिर किसी विकार में जा नहीं सकती। सिर्फ इस अंतिम जन्म में जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। उसको भी यही समझ में आ गया कि तुम आत्मा हो और इस संसार में रहते हुए इस संसार से अलग हो। परंतु कितनी उसने धारणा की होगी, नहीं की होगी, ये उस आत्मा का पार्ट है, ठीक है। परंतु उसको भी यही ज्ञान मिला, परंतु अभी तक इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि उसको क्या जीवन मुक्ति मिली। बाकी कहानी के हिसाब से वो मतलब महलों में भी रहते हुए महलों से क्या था, न्यारा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। गीत, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त न ठहरेगा। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक है। सबका सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। वही क्या बनता है? अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्होंने एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सत्युग त्रेता में कहेंगे। तो उनको द्वापर में, कहानी के हिसाब से जनक द्वापर में हुआ, तो वहां कैसे उसको मुक्ति, कैसे जीवन मुक्ति मिली? जीवन मुक्ति कैसे मिली? फिर वो कहां चला गई उसकी जीवन मुक्ति? क्योंकि नियम अनुसार तो हम सारी आत्माएं एक साथ घर जाएंगी, कोई पहले जा नहीं सकता, तो उसको जीवन मुक्ति मिली कैसे? तो वो एक गपोड़ा है, वो एक गपोड़ा है। सीधी सी बात है, तो जब किसी को मिल नहीं सकती, तो एक बार जीवन मुक्त बना, वो भी हाँ, ये मिसाल किस लिए दिए जाते हैं? तो बाबा कहते, बच्चे जो कुछ तुम गलत जानते हो, पहले तुम्हें, अब मेरे को चलो गलत बात मालूम हो सकती है, अब आपको तो गलत बात मालूम ही नहीं है, तो पहले तो आपको गलत बताया जाए जो दुनिया में आधा अधूरा आप सुनते आए, फिर उसको ठीक करना किया जाए। ठीक भी तो आपसे ही कराना है ना, आप ही को तो समझाना है ना, क्योंकि भाई देखिए, यदि बाबा मुरली में लिख देता कि ये गपोड़ा है, तो नया आदमी सुनते ही दरवाजे से बाहर भाग जाता है, कहता भाई मैं पीछे पीछे दूर दूर बैठा हूँ दरवाजे से, ये गपोड़े बताते हुए भाग जाओ। मुझे पता है, इसलिए बाबा जो है ना, इसमें नहीं लिखता गपोड़ा है, क्योंकि उसके लिए नए बच्चों को लगे कि ये हमारी बात भी कर रहे हैं। तो बाबा जो है ना, जानता है बच्चों को, इसलिए बाबा नहीं कहता कि ये गपोड़ा है, परंतु बाबा ये कहता है ये ज्ञान बड़ा गुह्य है, इसे बैठ कर मंथन करो। कई बार आता है, मतलब ये नहीं नहीं, मतलब बाबा जहाँ देखते ना, देखते हैं कि भी सामने मेरे वो बच्चे बैठे हैं जो समझ सकेंगे, तो उन्होंने कहा बच्चे ये वेद शास्त्र पुराण ये सब कपोड़े हैं, और ये एक ऐसी घास है कि जो गाय को खिलाया भी नहीं जा सकता।
कोई काम आने वाली नहीं।
हाँ, यहाँ नहीं कह रहे, परंतु हमें समझना है, अपने हम विचार करना है ना कि जनक द्वापुर में हुआ। जब जनक द्वापुर में हुआ, चलो हम आपके हिसाब से मान लेते हैं झूठी कहानी तो त्रेता के लिए है, तो त्रेता में भी हुआ, जबकि सच्ची का जो रामायण लिखी गई वो तो द्वापुर में लिखी गई, परंतु हम मान लेते हैं कि त्रेता में भी चलो राम आपका आया और उसके बाद जनक भी उस समय हुआ होगा। तो जनक उस समय हुआ, त्रेता में उसको जीवन मुक्ति मिली, फिर वो कहाँ गया, कहाँ गया, आज तक कहाँ गया वो, क्योंकि घर तो जा नहीं सकता, घर जाने का तो नियम ही नहीं है कि चलो भी जीवन मुक्ति मिल गई और यहां से चला गया। जीवन मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति अभी हम जब प्राप्त करेंगे तो जीवन मुक्त दुनिया सतयुग में आ सकेंगे। हाँ जी,
तो फिर वो पहले जन्म में किया होगा, उसका पनपारा होगा, कहाँ पर मेरे मिलेगा
भाई जी, उसके अंदर ये दिखाया है कि जनक ने जो है, राजा जनक जो है, उसने का उसको किसी ने कह दिया कि जीवन मुक्ति एक सेकंड में दे सकता है गुरु। अब उसकी सुई अटक गई, उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मुझे जीवन मुक्ति दिलाएगा मैं उसे अपना गुरु बनाऊंगा, और यदि नहीं दिला सकता तो आवे नहीं मेरे पास, यानी और यदि आया और उस जीवन मुक्ति नहीं दिला सका तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा। ऐसे कितने गुरु आए और वो सब उसको जीवन मुक्ति नहीं दिला सके और उसने उन सब को जेल में डाल दिया। उसमें से एक अष्टावक्र का बाप भी था जो जेल में पड़ा हुआ था, उसको भी बड़ा अहंकार था कि मैं जो है ना जीवन मुक्ति दिला सकूंगा, नहीं दिला सका। और उसके बाद अष्टावक्र को अपने बाप को छुड़ाना था, इसलिए वो आया और उसने आके उसे जीवन मुक्ति का मंत्र दिया। और जो जीवन मुक्ति का मंत्र दिया उसको मैं शॉर्ट में दे रहा हूं, लंबी कहानी हो जाएगी, कि उसे कहा कि ना आपने जीवन मुक्ति लेनी है, कोई बात नहीं, ऐसा है मेरे भाई सब बात तो समझना सबके लिए, तो ध्यान से समझ लो मेरे भाई बात को, एक बात भी समझ में आ जाए, और जिसके पास टाइम की कमी हो तो चला जाए, टेंशन नहीं लो। मतलब कहने का मतलब कि आपको, अरे भाई, भाई जी, भाई जी क्यों आपस में क्यों आप कर रहे हो, अरे भाई जी बस खत्म करो ना। मेन बात आती है कि समझने वाली बात है कि जब जनक को सिर्फ इतना सा ही दिया कि गुरु आपने जीवन मुक्ति चाहिए ना, बोला हाँ, तो बाकी सबको भेज दो घर और चलो मेरे साथ। अब उसको लेके चल दिया, अब राजा घोड़े पर चला तो जो भी साथी थे उन सबको भिजवा दिया, अकेला वो रह गया जनक। उसके बाद कहा कि आपने क्या वो जीवन मुक्ति चाहिए तो पहले मुझे गुरु धारण करो। गुरु धारण कर लिया तो क्या कहते हैं, गुरु तू घोड़े पर चल रहा है और मैं पैदल चलू, गुरु को घोड़े पर बैठना चाहिए, तो खुद घोड़े पर बैठ गया, राजा पैदल पैदल चलने लगा। उसके बाद आगे जा करके जंगल में उतर गया, उतर करके उसने राजा जनक को कहा कि अब तुम घोड़े पर चढ़ो और मेरा कहना तुमको मानना है, जो आज्ञा। अब जैसे उसने उसके जो पैर रखने वाला होता है ना उसके ऊपर पैर रखा और अपने आप को ऊपर उठाया तो स्टॉप, अब कहां हो, अब ना आप धरती पर हो और ना आप घोड़े पर हो, ठीक है। और उसके बाद इसी प्रकार से तुमने इस संसार में रहना है, क्योंकि तुम परमधाम में भी नहीं हो और तुम इस दुनिया में भी नहीं हो। तुम्हें इस प्रकार से इस संसार में रहना है, बस इतना ज्ञान था, कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं। अब इसको क्या समझा क्या नहीं समझा, कैसे समझा ये वो जाने, और इसको उन्होंने जीवन मुक्ति समझ लिया कि मैंने इस संसार में रहते हुए इस संसार में लिप्त नहीं होना है। जैसे कमल का फूल न्यारा है, ऐसे ही समझाने के तरीके हैं, परंतु असली ज्ञान तो अब हमें समझ में आ रहा है कि देह सहित देह के सब संबंधों से क्या हो जाना है, हमको मुक्त हो जाना है, फ्री हो जाना है। तो लेकिन मतलब उसको भी तो जीवन ऐसा रहा, तो मतलब उस जीवन में रहा होगा, तो अगला जन्म लिया तो इसी संसार में लिया ना, उसका अगले जन्म लिए तो इसी संसार में लिए ना, तो वो कोई भी आगे तो अपने साथ चलता रहना चाहिए था ना। अब हम जब ये समझ जाएंगे तो हम सत्युग में जाने के लायक होंगे। यदि अब हम जीवन मुक्त नहीं हुए तो हम सत्युग में नहीं जा सकेंगे। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। सत्युग त्रेता में कहेंगे जीवन मुक्ति मिलती है सत्युग त्रेता में, सही माने में, परंतु यहाँ पर जितना आप अपने आप को न्यारा प्यारा बनाते जाएंगे, आखिर बनेंगे तो यहीं पर ही ना, उसके बाद अगला जन्म मिलेगा। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कह देते हैं, तो वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र। वो मंत्र सलाह होती है, परंतु वो सलाह को समझते नहीं। तो बाबा भी महान सलाह देते हैं, जीवन मुक्ति का मंत्र। ये मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। शिव बाबा ने दिया ब्रह्मा कुमारों को, और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां फिर सबको ये मंत्र देती हैं। अब मंत्र को रटना नहीं है, मंत्र सलाह है कि अपने आप को देह से न्यारा समझकर यहाँ रहो। उस सतगुरु से सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो, उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं, तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है, नंबर वार तो होते ही हैं। तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो, तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो। बाप से क्या करो? प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि ना बोलना ये तो कॉमन बात है, झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वे बात नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है, यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे ये तो बहुत ऊंच मंजिल है, ये तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये तो गाया हुआ है कमल फूल समान। ये दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है, जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है। है भी भगवानोवाच, है भी कहा भी गया भगवानोवाच, है भी भगवानोवाच या ब्राह्मणोवाच। भगवान सबको नहीं सुनाते, भगवान सबको नहीं सुनाते, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। परमात्मा से तो केवल ब्राह्मण ही सुनेंगे, जो ब्राह्मण नहीं बने वो बाबा की बातों को सुन ही नहीं सकेंगे, समझ ही नहीं सकेंगे। शब्द सुन लिए तो उससे कोई उनके जीवन में परिवर्तन आना नहीं। जो अब पवित्र नहीं बने, चाहे वो यहाँ बैठे भी हों, उनको भी ये ज्ञान समझ में आएगा ही नहीं। सुन लिया, समझ में नहीं आएगा, जीवन में नहीं आएगा। सुनना, समझना, फिर जीवन में आना, ये सब में अंतर है, यही सारा अंतर आ जाता है। ये बात तुम्हें सबको समझानी है, मूल बात है पवित्रता की, कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिसल वही जनक फिर अनुजनक बना, वही जनक फिर क्या बना,
अनुजनक
बना। अब ये कौन सा जनक अनुजनक बना ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अनुजनक कहा जाता है छोटे जनक को। अनुजनक के लिए कहते हैं जिसने जनक को अनुसरण किया, भी एक को देखा दूसरे ने उसको क्या किया, अनुसरण किया, उसी अनुसार चला, तो उसको भी अनुजनक कह दिया। जैसे मतलब बाबा हो गया सतगुरु, तो हमने बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में धारण किया तो हम हो गए गुरु। छोटे तो बड़ा गुरु, उससे छोटा गुरु। वही जनक फिर अनुजनक बना, जैसे राधे अनुराधा बनती है। अब राधा और अनुराधा इसका मतलब तो हमें समझ में नहीं आया। अनुराधा कृष्ण का और राधा जो है कृष्ण की प्रेमिका थी और अनुराधा अलग थी, तो ये समझ में नहीं आता कि राधा अनुराधा कैसे बने। बस सिर्फ समझने वाली बात है कि अनु शब्द से छोटा या जो उसको अनुसरण करे, ये मतलब आता है। तो कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। अब तीसरे एग्जांपल से हमें समझ में आ रहा है क्या होता है कि नारायण सतयुग में सबसे पहले नारायण आया, नारायण ने जन्म ले लिया। अब उसका अगला जन्म हुआ तो वो क्या बन गया, अनु नारायण। अनु नारायण मतलब नारायण जो था, पहला नारायण जो था उसको हम समझ लें कि 100% था। उसने वो शरीर छोड़ दिया तो उसने अगला शरीर लिया तो वो क्या बन गया, पवित्रता कम हो गई ना, क्योंकि हर जन्म में उसकी पवित्रता क्या होती जानी है, कम होती जानी है। तो जैसे त्रेता में जनक था जिसने मान लो आपके हिसाब से जीवन मुक्ति प्राप्त की, तो वो अगले जन्म में तो उससे कम हुआ ना, उससे अगले जीवन में क्या हुआ, कम हुआ। उसको वो जीवन मुक्ति अगले जन्म में कम हुई, परंतु बाबा आकर हमें जीवन मुक्ति सिखलाते, परंतु हम क्या होंगे, कंप्लीट बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, संपूर्ण पवित्र। हां जी, यहीं से बनकर जाएंगे फिर आकर जन्म लेंगे सतयुग में। तो यहाँ चढ़ती कला होती है और चढ़ती कला के लिए मेहनत करना पड़ता है, परंतु उन्होंने तो एक सेकंड में कहा और बन गए। मतलब संपूर्णता तो हमारी एक सेकंड में आएगी, मेहनत तो पहले करनी पड़ेगी ना, ये एक्यूरेट बात है। तो ये एक्यूरेट बात है, वो एक्यूरेट बात नहीं बनती जो इसकी है जनक वाली। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, गृहस्थ व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते। बाबा कहते हम गपोड़ा नहीं मारते, दुनिया वालों ने तो गपोड़े मार लिए, उन बेचारों को तो कुछ पता था नहीं, उनको जो मर्जी आया कह दिया, आगे वालों ने सत वचन कह दिया। भगवानो वाच, मुख्य बात समझानी है, भगवान सबका बाप है। भगवान को क्या है, सबका बाप है। तो जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है, जो सबका बाप है वही तो जीवन मुक्ति देगा। ये है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का तो है निवृत्ति मार्ग। वे कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, वे तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं, वो ये ज्ञान दे नहीं सकते। ये है राजयोग, ये है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए, राजाई में स्त्री भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए, दोनों चाहिए। राजाई तो एक को तो नहीं मिलेगी ना, रानी भी तो होगी ना, तो समझाना पड़ता है। हम अनुभवी हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं, कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र वन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, ये दुनिया ही क्या बन गई है, भ्रष्टाचारी है। वे श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है, भ्रष्टाचारी दुनिया में क्या है, भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है, क्यों करते रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा, तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बना, आकर हमको क्या करो, श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है, अभी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। भारत की नई रचना का की कहानी कोई जानते ही नहीं, कोई आए ना देखो। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते नहीं। जो भ्रष्टाचारी थे वही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। कोई श्रेष्ठाचारी पैदा नहीं होते कि पैदा हो तो श्रेष्ठाचारी बाद में बन जाए भ्रष्टाचारी, ऐसा नहीं है। मतलब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं और श्रेष्ठाचारी फिर धीरे धीरे भ्रष्टाचारी भी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है, ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भल लिख दें कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे ये बनाओ, फिर सबको भेजो तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। ये चित्र बहुत अर्थ सहित हैं, ये चित्र बहुत अर्थ सहित हैं। पहले पहले ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, भगवान है स्वर्ग रचने वाला। हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो, ये जो सृष्टि चक्र का है ना, उसके ऊपर बाबा क्या कह रहे हैं, गोले के ऊपर जहां कलयुग खत्म हो रहा है वहां रावण के क्या लगा दो, 10 सिर वाला चित्र बना दो, ठीक है। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते हैं, रावण को भी बनाओ और किसको बनाओ, चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज का भी चित्र लिख भी सकते हो। ये है राम राज्य और ये है रावण राज्य। जिस तरफ सतयुग है उस तरफ लिखो राम राज्य, और इस तरफ रावण खड़ा कर दो वो है रावण राज्य। मतलब कलयुग में है रावण राज्य और फिर होता है राम राज्य। फिर वहां समझाना है त्रेता वाला सीताराम अलग और परमात्मा राम अलग। वो आकर रावण की दुनिया में राम राज्य स्थापन करते हैं, और राम राज्य का मतलब वो रावण वाली कहानी झूठी है, वो नहीं है। क्योंकि बाबा आते हैं संगम पर, कलयुग से क्या करते हैं, सतयुग करते हैं। इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला। तो जरूर वो आएगा ना, ये हिसाब कोई भी जानते नहीं। पहले पहले अलग हुई देवी देवताओं की आत्माएं, परम धाम से सबसे पहले कौन सी आत्माएं आती हैं, देवी देवताओं की आत्माएं। ये नॉलेज है, कोई को भी समझाना है, आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा अपने परम पिता परम आत्मा का ऑक्यूपेशन बताओ, धंधा बताओ, क्या नहीं जानती हो। ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता हैं, वे इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं। सिद्धों उनका भी हिसाब लेंगे, कितने जन्म लेंगे, क्योंकि हर धर्म जितना लेट आएगा, जितना देर से आएंगे, तो उतने जन्म उनके क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। सिद्ध कर बताना पड़े, मैक्सिमम 84, कम से कम एक। ये झाड़ वृद्धि को तो पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्होंने ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत को नॉलेज किसने दी, प्राचीन भारत को नॉलेज किसने दी, ये भगवान ने ही दी है ना। नॉलेज नॉलेजफुल गॉड फादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, ये समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक है, निराकार परम पिता परम आत्मा, वो है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना, ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है ना, सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंचते ऊंच प्रेसिडेंट फिर नंबर वार और है, सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे। ऐसे तो नहीं कि सब एक ही हैं, हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, ये सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं, लाइन क्लियर का मतलब जिसको बाबा का ज्ञान सही रीति समझ में नहीं आया, कोई विकार है या किसी के नाम रूप में फंसा हुआ होगा, तो उसकी लाइन क्लियर नहीं है। तभी तो वो नाम रूप में फंसा है, तभी तो उसमें विकार है। उसे सच समझ में आ जाए तो उसके जीवन में कोई विकार रह नहीं सकता। तो ये काम हो नहीं सकेगा, इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, ज्ञान एकदम स्पष्ट चाहिए। डाउट होगा तो, शक होगा तो छोड़कर चला जाएगा, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अब भी सभी नंबर वार हैं। मनुष्य कहते हैं ये व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि जिसने देह धारण कर ली, देह को भोग लिया, वो तो भगवान हो नहीं सकता। अब बनाए जाओ जितने भगवान तुम्हारी मर्जी है, कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। ये बुद्धि में बैठ जाए तो वो किसी को भी भगवान नहीं मानेगा। वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही चार, भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक, माए बाप गीता, माँ बाप सभी धर्मों की माँ बाप है गीता। और वो कौन सी गीता, जो शिव बाबा ने संगम पर सुना, जो वो दुनिया वाली गीता है वो है झूठी गीता, क्योंकि वो झूठे देहधारी ने बनाई। वर्षा उनसे ही मिलता है, माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता, तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राज योग की नॉलेज दी। गीता के द्वारा ही नॉलेज दी। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है, फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है और बौद्ध का अपना है। सभी धर्मों के अपने अपने शास्त्र हैं। क्रिश्चियन का बाइबल भी अपना है। गीता तो है सबका माँ बाप, बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे। वे दिन में निकले हैं, बाकी इतने वेद उपनिषद आदि ये सब किस धर्म के हैं? ये मालूम तो होना चाहिए कि ये किसने उचारे, उससे कौन सा धर्म निकला। कोई धर्म तो है नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। जो दुनिया वालों ने गीता लिखी है वो खंडित गीता है, अधूरा ज्ञान है, आटे में नमक जितना सच है। तो गीता खंडन की हुई है, बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम, याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही ये कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते। ये गीता के अक्षर हैं, सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भाव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग, माम एकम याद करो, तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद क्या मिलेगी? जीवन मुक्ति। जरूर पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति। पहले मुक्ति में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। जो भी आते हैं वो सत्व रजो तमो से पास करते हैं। समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज। तुम जगह जगह पर क्या करो, प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो, भल सब सुने। अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अति इंद्रिय सुख की भासना, अति इंद्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो कि क्या होती है। गाया हुआ है ये गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। गोप गोपियां ना सतयुग में ना कलयुग में होते हैं। गोप गोपियां ना तो सतयुग में होते हैं और ना कलयुग में होते हैं। वहां लक्ष्मी देवी राधे देवी हैं, गोप गोपियां अभी हैं। गोपी वल्लभ के बच्चे, गोपी वल्लभ के बच्चे पोत्रे पोत्रियां हैं। गोपी वल्लभ बाप है शिव बाबा, हम हैं उनके गोप गोपियां, उनके हमारे जो है ना वो है दादा। जरूर दादा भी होगा, दादा बाबा और मम्मा। ये नई रचना हुई है संगम पर। बात कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूं नई दुनिया बनाने। आखिरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे देवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे। 84 जन्मों में, कितने जन्मों में? 84 जन्मों में कहा तो देवी संतान थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र संतान बन गए। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है, झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए, परले भी नहीं होती है। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा करनी है, भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी भी नहीं होता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये रात्रि क्लास है, 16 अप्रैल 1968 को किया। तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी ये पता नहीं कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राज योग सिखलाते हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है, उनके आगे महिमा गाते हैं। आप पुरुष उत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं, आपे ही बताते हैं मैं ऐसे हूं ऐसे हूं। अभी इस पुरुष उत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मणों बिगर कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम पर, संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, ये कैसे पता पड़े ये सबको बताना है। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसा क्या युक्ति, ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े। परंतु होगा धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम हो जाएगा। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है। ज्ञान कितनी देर का है? 1 सेकंड का। जिस सेकंड में ज्ञान समझ में आया, जिससे तुम उसी के पास उसी समय, ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वो थोड़े ही सेकंड में कटेंगे, इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाएं। लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते, किताबें पढ़ी और उससे उल्टा ज्ञान उठा लेते हैं। तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं, क्योंकि उल्टा ज्ञान उठाएंगे वो जिनकी तकदीर में नहीं होगा, या उनको अभी ज्ञान की जरूरत नहीं होगी। تقدیر میں نہیں ہے تو الٹا اٹھا لیتے ہیں. تم سمجھتے ہو یہ پرشوتم بننے کا یگ ہے, ہیرے جیسا گائن ہے, گائن ہے نا, پھر کم ہو جاتا ہے. گولڈن ایج, سلور ایج, یہ سنگم یگ ہے. ڈائمنڈ ایج ستیگ ہے, گولڈن ایج, یہ تم جانتے ہو. سورگ سے بھی یہ سنگم اچھا ہے, ہیرے جیسا جنم ہے. یہ جنم کیسا سنگم یگ کا, ہیرے جیسا جنم ہے, کیونکہ ہم کوئلے کی کھان میں ملے اور ہیرا بنے. امر لوک کا گائن ہے نا, پھر کم ہوتا جاتا ہے. تو یہ بھی لکھ سکتے ہو, یہ بھی لکھ سکتے ہو, پرش اتم سنگم یگ ہے. اتم پرش بننے کا یہ سنگم یگ ہے. ڈائمنڈ ستیگ ہے, سنگم یگ ہے ڈائمنڈ, اور ستیگ ہے گولڈ سونا, اور تریتا ہے سلور, اور دواپر ہے کاپر, اور کل یگ ہے آئرن. یہ بھی تم سمجھا سکتے ہو, سنگم پر ہی ہم منشی سے دیوتا بنتے. آٹھ رتن بناتے ہیں نا, تو ڈائمنڈ کو بیچ میں رکھا جاتا ہے, سنگم کا شو ہوتا ہے. سنگم یگ ہے ہیرے جیسا, ہیرے کا مان بیچ میں رکھا جاتا ہے. کال یگ ہے شودر, پھر ڈائمنڈ, اور پھر بابا کا گولڈن. سنگم یگ ہے ہی ہیرے جیسا, ہیرے کا مان سنگم یگ پر ہے. یوگ آدی سکھ لاتے ہیں, جس کو اسپرچل یوگ کہتے ہیں, پرنتو اسپرچل تو فادر ہی ہے, روحانی فادر اور روحانی نالج سنگم پر ہی ملتے ہیں. روحانی نالج بھی سنگم پر ملتی ہے, اور روحانی نالج بھی سنگم پر ہی ملتی ہے. منشیہ جن میں دیہ اہنکار ہے, وہ اتنا جلدی کیسے مانیں گے. غریب آدی کو سمجھایا جاتا ہے, تو یہ بھی لکھنا ہے. سنگم یگ از ڈائمنڈ, سنگم یگ از ڈائمنڈ. ان کی آیو اتنی, ستی گولڈن ایج, ان کی آیو اتنی. شاستروں میں بھی سواستی کا نکالتے ہیں, تو تم بچوں کو بھی یہ یاد رہے تو کتنی خوشی رہے. اسٹوڈینٹس کو خوشی ہوتی ہے نا, اسٹوڈینٹ لائف از دا بیسٹ لائف. اسٹوڈینٹ جیون جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. یہ تو سورس آف انکم ہے, کیونکہ اسٹوڈینٹ لائف میں ہی گیان ملتا ہے. یہ ہے منشیہ سے دیوتا بننے کی پاٹھشالہ. دیوتائیں تو وشو کے مالک تھے, یہ بھی تم کو معلوم ہے, یہ بھی تم کو معلوم ہے, تو اتھا خوشی ہونی چاہیے. اس لیے گائن ہے, اتی اندری سکھ پوچھنا ہو تو گوپی ولب کی گوپ گوپیوں سے پوچھو. ٹیچر انت تک پڑھاتے ہیں, تو ان کو انت تک یاد کرنا چاہیے. بھگوان پڑھاتے ہیں, پھر بھگوان ساتھ بھی لے جائیں گے. پکارتے بھی ہیں لیبریٹر گائیڈ, دکھ سے چھڑاؤ. ستیگ میں دکھ ہوتا ہی نہیں, کہتے ہیں وشو میں شانتی ہو. بولو آگے کب تھی, وہ کون سا یگ تھا, کسی کو پتا نہیں. رام راجے ستیگ, راون راجے کل یگ. یہ तो ये तो जानते हो ना, बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात, क्या सुनाऊं दिल की बात, बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला और क्या अनुभव सुनाऊं, और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। ये जैसे अपनी तकदीर से रूठना है, पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे, बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। ये है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना, विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, बाप जो सुनाते हैं वो एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। अभी सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के संबंध को त्याग बाप को याद करो। वरदान, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करना करने वाले सफलता मूर्त भव, सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी आपके परखने की शक्ति स्पष्ट है। ज्यादा बातें सोचने की बजाय एक बाप की याद में रहो। सिर्फ एक बाबा जो कहते हैं वही सुनना है, वही करना है। बाप से क्लियर रहो। कोई भी बात बाबा की और आपकी बात में कोई अंतर ना रहे, इसे कहते हैं क्लियर रहो। तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लक्की सितारे वो हैं जो जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले हैं, जो जग के अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। अच्छा, ओ शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम